बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजनीति हलकों में हलचल पैदा कर दी है। विपक्षी खेमे के घोर आशावादी लोगों को अचानक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। ऐसा लगता है कि उन्हें पक्का विश्वास हो गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार द मैट्रिक्स फिल्म के हीरो मॉर्फियस की तरह भाजपा की गोलियों को अपनी नंगी हथेली से रोककर मानव जाति की रक्षा करेंगे। यहाँ मानव जाति यानी विपक्ष। द मैट्रिक्स तो विज्ञान कथा पर आधारित हॉलीवुड फिल्म थी, लेकिन वास्तविक दुनिया का राजनीतिक सांचा तो कुछ अलग ही होता है। जरा इंडिया टुडे सी वोटर के देश का मिजाज सर्वे पर नजर तो डालिए। उसमें आप पाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मजबूत होते जा रहे हैं। सुप्रभात, द प्रिंट पॉट के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा मेहरोत्रा और आपको सुना रही हूं हमारे पॉलिटिकल एडिटर डीके सिंह की ये रिपोर्ट। नीतीश कुमार पहले बिहारी पीएम, पहले कुर्मी पीएम उम्मीदवार बनते हैं तो क्यों 2024 के चुनाव में कांग्रेस का अच्छा दांव होंगे। वैसे लोकसभा चुनाव के लिए अभी 18-20 महीने बाकी हैं और कहावत अगर विपक्षी नेताओं के काम आ सके तो कहा जा सकता है कि राजनीति के मामले में इसे लंबा वक्त माना जाएगा। 7 लोक कल्याण मार्ग के रास्ते में भी रोड़े दिखाई दे रहे हैं। नीतीश अपनी इस बात पर कायम है कि प्रधानमंत्री पद के लिए वे दावेदार नहीं हैं, लेकिन जब विपक्ष को एक करने की बात करते हैं और यह संदेह जाहिर करते हैं कि 2014 का विजेता 2024 में भी विजेता नहीं हो सकता है, तब उनके ये बयान बहुत मानीखेज लगने लगते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता घनश्याम तिवारी ने 10 अगस्त को इंडियन एक्सप्रेस में छपे अपने लेख में 2010 के एक रात्रि भोज में नीतीश के इस बयान को याद किया है कि जो पार्टी या परिवार के बूते नहीं बल्कि अपने दम पर जमीन से ऊपर उठता है वो 70-72 साल की उम्र में जाकर प्रधानमंत्री बनने के लिए मजबूत दावेदार बन जाता है। गौरतलब है कि नीतीश आज 71 साल के हो चुके हैं, लेकिन मजबूत दावेदार बनने के लिए सबसे पहले तो उन्हें कांग्रेस के बारे में अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। 2010 में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के उनके पुराने सहपाठी रहे पत्रकार अरुण सिन्हा ने उनसे कहा था कि भारत में कई उदारवादियों को इस बात पर आश्चर्य है कि उन्होंने भाजपा से रिश्ता तोड़कर कांग्रेस से हाथ क्यों नहीं मिलाया। इस पर नीतीश का जवाब था, कांग्रेस में इतना अहंकार है कि उसे बर्दाश्त करना मुश्किल है। वे लोग सोचते हैं कि भारत में एकमात्र राजनीति दल वही है, बाकी सब ऐसे वैसे ही हैं। लेकिन वास्तव में यह गुलामों की पार्टी है, वहां सत्ता एक ही परिवार से निकलती है। यह देश की सबसे वाहियात पार्टी है। अरुण सिन्हा ने नीतीश की जो शानदार जीवनी द बैटल फॉर बिहार नीतीश कुमार एंड द थिएटर ऑफ पावर लिखी है, उसमें उनका यह बयान भी लिखा है। कांग्रेस से नीतीश की शिकायत की वजह भी है। उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी राम लखन सिंह ने 1952 में बख्तियारपुर से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से टिकट की मांग की थी, जिसे उसने यह कहकर ठुकरा दिया था कि वह उन्हें अगली बार टिकट दे सकती है, लेकिन 1957 में चुनाव में भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया, इसलिए नीतीश के पिता ने कांग्रेस छोड़ दी। लेकिन ठेठ राजनीति करने वाले नीतीश ने 2015 में अपने महागठबंधन वाली सरकार में कांग्रेस को शामिल करने से परहेज नहीं किया। महागठबंधन के गठन से पहले वे राहुल गांधी से मिले और कांग्रेस को भी इसमें जोड़ने का फैसला किया। इसकी वजह यह थी कि लालू यादव उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। मुलायम सिंह यादव और शरद यादव ने उन्हें इसके लिए राजी किया। मुलायम उस समय जनता दल के बिखरे घटकों जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर और इंडियन नेशनल लोकदल को एकजुट करने में लगे थे। नीतीश अगर राजद को अलग करके कांग्रेस के साथ चले जाते तो मुलायम के प्रयास विफल हो जाते। यह सब अब इतिहास हो चुका है। कांग्रेस आज नीतीश की सरकार में वापस शामिल होने को है। राहुल नीतीश के प्रशंसक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में ऐसे किसी को कबूल नहीं करेगी जो गांधी परिवार का ना हो। एक समय था जब नीतीश यह उम्मीदवार नहीं बनना चाहते थे। 2013 में जब वे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी का विरोध कर रहे थे, तब उन्होंने अपने जीवनीकार से कहा था, इतिहास साफ सबक दे चुका है, किसी छोटे दल के नेता को किसी बड़े दल के समर्थन से प्रधानमंत्री बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। किसी बड़े दल के समर्थन से केंद्र सरकार का नेतृत्व करना बिल्कुल मूर्खता है। यह बात जब उन्होंने कही थी, तब बेशक उनकी उम्र 70 साल से ऊपर नहीं हुई थी, जिसे आज वे प्रधानमंत्री पद का मजबूत उम्मीदवार बनने की एक शर्त बता रहे हैं। उन्हें केवल कांग्रेस का अनिश्चित रुख ही परेशान नहीं कर सकता है, भाजपा से रिश्ता तोड़ने के बाद क्षेत्रीय छत्रपों की चुप्पी पर भी उन्होंने गौर किया होगा। विपक्षी खेमे में प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की बड़ी संख्या भी बिहार के मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षा के लिए एक रोड़ा है। 2019 में जब नीतीश ने कहा था कि बिहार से बाहर वे एनडीए से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें बधाई दी थी और धन्यवाद भी कहा था। अब जबकि बिहार में उन्होंने एनडीए से रिश्ता तोड़ लिया है, तब ममता भी चुप हैं और अरविंद केजरीवाल के चंद्रशेखर राव तथा दूसरे नेता ने भी चुप्पी साध रखी है। इन सबको 2010 के नीतीश शायद कबूल थे, जब तत्कालीन अमेरिकी राजदूत टिमोथी जे रोमर ने पटना के अपने दौरे के बीच यह बयान दिया था कि राष्ट्रपति बराक ओबामा के दौरे के लिए बिहार बिल्कुल उपयुक्त स्थान है। 2012 में पाकिस्तान के तत्कालीन उच्चायुक्त सलमान बशीर ने विकास के बिहार मॉडल को प्रभावशाली बताते हुए कहा था कि पाकिस्तान में यह चर्चा का विषय है। लेकिन 2022 के नीतीश विपक्षी खेमे में कई लोगों को प्रभावित नहीं करते। न हो तो नीतीश के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को देख लीजिए, जो पिछले विधानसभा चुनाव में बड़ी भीड़ खींच रहे थे और नीतीश के कुशासन और विफलताओं पर हमले कर रहे थे। मोदी ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी करते हुए शासन का गुजरात मॉडल मिसाल के रूप में पेश किया था। उसके विपरीत नीतीश के पास आज बिहार की कोई गाथा सुनाने को नहीं है। अड़चनों के बावजूद प्रधानमंत्री पद के विपक्षी उम्मीदवार के रूप में नीतीश कांग्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ दांव हो सकते हैं, बशर्ते वह अभी भी यह न माने बैठी हो कि राहुल ही मोदी को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। आज जबकि ममता बनर्जी भी यह मानती हैं कि 2024 में सबसे अच्छी स्थिति यह होगी कि भाजपा को बहुमत नहीं मिलेगा, तब नीतीश कांग्रेस के लिए कोई दीर्घकालिक खतरा नहीं बनने वाले। उनका समर्थन करके वह 3 लक्ष्य हासिल कर सकती है, भाजपा को कमजोर करने, केजरीवाल और ममता जैसे महत्वाकांक्षियों का मुकाबला करने और पिछड़े समुदायों में कुछ सद्भाव हासिल करने के लक्ष्य। नीतीश की साफ सुथरी छवि है, उन पर परिवारवाद का ठप्पा भी नहीं लगाया जा सकता। ये तथ्य भ्रष्टाचार, परिवारवाद के नाम पर भाजपा के चुनावी नारों को बेअसर कर सकते हैं। बिहार के कुर्मी मुख्यमंत्री भाजपा के ओबीसी प्रधानमंत्री का अच्छा जवाब बन सकते हैं। पहला बिहारी प्रधानमंत्री नारा उस राज्य में मोदी की लोकप्रियता का मुकाबला करने में मदद कर सकता है, जिसकी 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटें जदयू समेत एनडीए ने जीती थी। इन 39 में से 17 सीटें भाजपा ने और 6 सीटें लोजपा ने जीती थी। बिहारी प्रधानमंत्री को मैदान में उतारना बिहार में भाजपा के संभावित सहयोगियों को बचाव की मुद्रा में ला देगा। इसमें कुर्मी प्रधानमंत्री के नारे को भी जोड़ दीजिए। भाजपा उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के कुर्मी नेताओं को आगे बढ़ाकर और अपना दल से गठजोड़ करके कुर्मी समुदाय को रिझाने की कोशिश की है। बिहार की यह पहल अपना दल की अनुप्रिया पटेल को भी मुश्किल में डालेगी। हाल में भाजपा की ओर रुख कर रहे सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर ने यहां तक कहा है कि विपक्ष ने अगर नीतीश को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो वे उनका समर्थन करने पर विचार कर सकते हैं। सपा के कुर्मी विधायकों की संख्या 2017 में मात्र 2 थी और 2022 के चुनाव में बढ़कर 13 हो गई। थी, लेकिन भाजपा के कुर्मी विधायकों की संख्या पिछले चुनाव में 26 से घटकर 2022 के चुनाव में 22 हो गई। उत्तर प्रदेश की आबादी में कुर्मी आबादी का अनुपात 7% है। हालांकि कुर्मी आबादी देश के उत्तरी, मध्य और पश्चिमी भागों में फैली है, लेकिन उसका बड़ा राजनीतिक प्रभाव बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में ही सिमटा है। बिहार में कुर्मी आबादी का अनुपात केवल 3-4% ही है, लेकिन नीतीश ने अपना एक बड़ा आधार बनाया है अति पिछड़ा और महादलित वर्गों में। यह मुमकिन नहीं है कि जब नीतीश को दावेदार घोषित किया जाएगा तब उसका असर बिहार से बाहर उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुछ इलाकों में नहीं होगा। लोकसभा में कुल 134 सांसद भेजने वाले इन राज्यों में भाजपा का बड़ा दांव लगा हुआ है। कांग्रेस अगर प्रधानमंत्री पद के एक बिहारी दावेदार का समर्थन करेगी तब यह ममता और केजरीवाल को भी मुश्किल में डाल देगा, क्योंकि दिल्ली और पश्चिम बंगाल में प्रवासी बिहारी कामगारों की संख्या अच्छी खासी है। एक कुर्मी दावेदार अखिलेश यादव को भी गठबंधन को लेकर अपने रणनीति पर पुनर्विचार करने पर मजबूर करेगा। मोदी बनाम नीतीश जंग के नतीजे क्या होंगे इसकी कल्पना की जा सकती है, लेकिन कांग्रेस के लिए यही सबसे अच्छा दांव है, खासकर इसलिए कि ममता और केजरीवाल जैसे उम्मीदवार अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं। सो इस दांव में कांग्रेस को अपना अहम छोड़ने के सिवा गंवाने को कुछ नहीं है। हमारा यह पॉड सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए अंक में, तब तक जुड़े रहिए द प्रिंट से। नमस्कार।